अच्छा उन्होंने कहा अच्छा चलें, जब वो आ गया ताबूत उन्होंने कहा ठीक है भाई हम मान लेते हैं इनको, तो उन्होंने तालूत को मान लिया अपना बादशाह। फिर क्या हुआ, फिर अब वो मार्का जिसके लिए इन्होंने कहा था कि हम हमें लेके चले और वो ले जाके हमारे साथ इसकी लीडरशिप में हम लड़े, तो ठीक है फिर निकल पड़े तालूत अपना पूरा लश्कर लेकर। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद, फिर जब जुदा हुआ लैदा हुआ तालूत 7 लश्करों की, यानी वो चल पड़े अपने इलाके को छोड़ के निकले। कौला उसने कहा, किसने, तालूत अलैहिस्सलाम ने, इन अल्लाह मुबतली को बिनहर, बेशक अल्लाह ताला आजमाने वाला है तुमको एक नहर से। यानी जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश जरूर आती है, याद रखिए। ये भी निकले थे ना अल्लाह के लिए, लड़ने के लिए निकल रहे हैं ना, तो अब आजमाइश तो आएगी। उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हें आजमाएगा एक नहर से। फमन शरीबा मिनहू फलैसा मिन्नी, तो जो कोई पिएगा उससे वो मुझसे नहीं है, यानी वो मेरे साथ फिर आगे नहीं चल सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता। वमन लम यतअमहू, और जो नहीं पिएगा उसमें से, फइन्नहू मिन्नी, तो वो बेशक मुझसे है। इल्ला सिवाय इसके, मन इग्तरफा गुरफतन बियदी, कोई एक चुल्लू भर पानी ले ले अपने हाथ में और इतना सा सिर्फ पी ले, इतने की सिर्फ इजाजत होगी, जो इतना पी लेगा वो मेरे साथ चल सकता है, लेकिन जो इससे ज्यादा पिएगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा। अब आप सोचें, पानी पीना क्या गुनाह है, हलाल चीज है, हराम से हराम तो नहीं है। और गर्मी के सख्त के दिन थे, वो ट्रेवल करके आ रहे थे, सारा दिन सफर किया हुआ, लोहे में पैक्ड होते थे, तो जब पानी तक पहुंचे हैं तो कहा गया पानी नहीं पीना तुम्हें, आगे पानी आ रहा है। सोचे कितना एक कड़ा इम्तिहान है ना, सख्त प्यास लगी भी हो, लेकिन ये इम्तिहान अल्लाह की तरफ से ये आजमाने के लिए था कि कौन है कि जिसके अंदर सबर है, कौन है जिसमें सेल्फ कंट्रोल है, जब्त है, अपने नफ्स को जब्त करके चलता है, कौन है जो इताअत करता है अपने लीडर की, कौन है जो इस इम्तिहान में कामयाब होता है। ये अल्लाह ने इम्तिहान रखा था, और इम्तिहानात हलाल चीजों में भी आ जाते हैं बाज दफा, हराम से भी इंसान का इम्तिहान हो जाता है कि हराम में पड़ता है कि नहीं, लेकिन बाज दफा हलाल चीजों में भी होते हैं, हलाल रिश्तों में इम्तिहान हो जाते हैं। रिश्ता है हलाल रिश्ता है, लेकिन उसमें इम्तिहान, बाज दफा शौहर से इम्तिहान हो जाता है, बाज दफा औलाद के जरिए इम्तिहान हो जाता है, बाज दफा और इम्तिहान होते हैं, अल्लाह आजमा लेता है। और इम्तिहान किस लिए हुआ करते, इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने कोई मुशक्कत में डाल के इंसान को, अल्लाह ताला को कोई फायदा हो, नहीं, अल्लाह ताला इंसान को हीरा बनाना चाहता है मुश्किलात में डाल के, क्योंकि इंसानियों में, आसानियों में इंसान जो है कभी भी स्ट्रोंग नहीं हो पाता जैसे वो मुश्किलात में स्ट्रोंग होता है। आपको पता है हीरा कैसे बनता है? हीरे के लिए उन्होंने बताया इतना सख्त टेम्परेचर, कुछ हंड्रेड्स ऑफ फ़ारेनहाइट्स में कल पढ़ रही थी, कि इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है और इतना ज्यादा टेम्परेचर गर्म होता है, उससे फिर हीरा बनता है। कोयला हीरा नहीं बन पाता, इसलिए क्योंकि कोयले को उतना टेम्परेचर नहीं मिलता, वो कोयला ही रह जाता है, और कुछ धातें हीरा बन जाती हैं, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरती हैं, इस कदर प्रेशर के, इतना उनके ऊपर दबाव होता है और इतना सख्त गर्म टेम्परेचर होता है, तब वो हीरा बनता है। इंसानों में भी वो हीरे बनते हैं जो मुश्किलात से गुजरते हैं। इंसान सोचता है मैं आसानियों से गुजरूंगा ना तो वो मेरे लिए अच्छा है, अल्लाह कहता है नहीं, मुश्किलात से गुजरोगे तो तुम हीरे बनोगे। तो अल्लाह ने देखना भी तो है ना कि जो दावे करते हैं उसके बाद वो सच्चे भी हैं या नहीं। ये कह रहे थे ना, नहीं हमें तो अब अपनी हालत चेंज करनी है, हमें तो देखो इतना हमारे ऊपर ये जिल्लत आ गई, पस्ती आ गई, हमारे बच्चों को ऐसे हो गया, अब तो हमने लड़ना ही है, क्यों नहीं हम लड़ेंगे। पता चलेगा कि वहां वाकई जो तुम्हारी ख्वाहिश थी ये सिर्फ ख्वाहिश ही थी या उसके लिए कुछ एफर्ट भी करने को तैयार है। तो देख लें आगे, फशारिबू मिन्हू इल्ला कलीलन, जो ही वो वहां पहुंचे सब ने पानी पी लिया सिवाय थोड़े से के। क्या पता चला आपको इससे? ख्वाहिशात करना ठीक है, वो उन्होंने की, बहुत अच्छी ख्वाहिश थी उनकी, वो निकलना चाहते थे पस्ती से, ख्वाहिश थी, लेकिन उसके लिए एफर्ट जीरो है, निकल तो गए, उसके बाद अगले पहला इम्तहान ही आया, बैठ गए। तो ख्वाहिशात करना असल बात नहीं होती, कि हमारी ख्वाहिश है उम्मत मुस्लिमा जुड़ जाए, उम्मत मुस्लिमा का रूज देख लें हम, हमारी बड़ी ख्वाहिश है, क्यों नहीं हम चाहेंगे, हम मुसलमान हैं। और उसके बाद एफर्ट करने को कहो तो एक भी नहीं। देखे ना, अब ये देखें, सच्ची दिल से ही उन्होंने ख्वाहिश की थी, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, उनका वाकई दिल करता था कि हाँ हम इसमें से निकलें, हम लड़े और वो जाके हमारा, लेकिन एफर्ट के वक्त क्या हुआ, जब काम करने को कहा गया, आगे इम्तिहान आया तो बस बैठ ही गए। तो बात सिर्फ ख्वाहिशात करने से नहीं बनती, जो बड़े आला मकासिद होते हैं ना, वो सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिल जाते। अब मसलन आप ख्वाहिश कर रही हैं कि मैं, मिसाल के तौर पे, या आपका बच्चा ख्वाहिश करता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, बस ख्वाहिश करता रहता है हर बात, करना उसने कुछ नहीं, तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। हम कैसे सोचते हैं कि उम्मत मुस्लिमा ऐसे हो जाए, ये हो जाए, लेकिन अपनी छोटी सी एम्पायर में, छोटी सी जगह में, छोटी सी मस्जिद है या छोटी सी क्लास है या छोटी सी, उसमें तो लेग पुलिंग से हम रुकते नहीं, उसमें तो दूसरे को पिछाड़ने से हम रुकते नहीं, उसमें तो हसद और कीने, उसमें तो इतिहाद इतफाक से हम बैठ नहीं सकते। उम्मत मुस्लिमा किधर से इतिहाद इतफाक मांगते, छोटी सी जगह पे हम नहीं इतिहाद इतफाक से बैठते। तो देखिए, ये ख्वाहिशात करने से नहीं चीजें मिलती, कुछ करना पड़ता है, कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती, उसके लिए कुछ नहीं करते, जिसको अपनी फिक्र खुद नहीं होती। आज सिर्फ दुआओं में ये चीजें रह गई हैं, इसके अलावा आप किसी को उठा के कहें कुछ करने को, नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं। तो किधर से फिर ख्वाहिशात करते हो, उम्मत मुस्लिमा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। सब दुनियादारी के पीछे अगर पड़े हुए हो, अगर सारे दुनिया की मोहब्बत में पागल हो रहे हैं, उसके लिए काम करने को चाहे 24 घंटे भी लगा दो तो कहते हैं कोई बात नहीं, इतना पैसा जो बन रहा है, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं लगाने को तैयार। तो फिर क्या ये ख्वाहिशात की, इनकी क्या हैसियत रह जाती है? उन्होंने अपने आप को निकालना चाहा, क्या इस तरह से हो सकता था? कुछ भी ना करते और फिर बस बैठे ही रहते, निकले और देखो इम्तिहान में नाकाम होकर। तो ये सबर का इम्तिहान था, इताअत का इम्तिहान था, और उसके अंदर देखें अल्लाह ताला को ना ऐसे लोग असल में नहीं चाहिए जो बस बातें करते हैं और उसके बाद उनका काम कुछ ना, क्योंकि ये लोग फिर बाद में, जिनकी जो इतने कम हिम्मत लोग हों, ये दूसरों की भी हिम्मतें तोड़ देते हैं। फिर अगर थोड़े से लोग भी ना आपके साथ ऐसे मिल जाएं जिनके पास हौसला नहीं है, वो सब कोई पीछे पुल कर लेते हैं। ये आपको बता दूं, एक क्लास में भी अगर होंगे ना, तो वो अपनी हाय वाय से ना, जो लोग बेचारे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ने भी चाहते हैं, उनके सामने भी इतना हाय वैसे बड़ा ज्यादा है, बड़ा मुश्किल है, मैं तो समझती हूँ इतना मुश्किल ही आ गया है, ये तो सबक ऐसे। दूसरे भी हिम्मत हारने लगते, वो कहते हैं हाँ वाकई फिर बड़ा ही मुश्किल ही होगा, जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई होगी वो भी बैठ जाते। ऐसे लोग हमेशा पूरी जमात को पीछे पुल करते हैं, इनका साथ ना जाना ही सही था, अल्लाह ताला ने पहले ही एक छलनी लगा दी और उसमें से इनको निकाल दिया। फलम्मा जावजहु, फिर जब उसने पार कर लिया इसको, यानी इस नहर को पार कर लिया, हुआ उसने, यानी किसने, तालूत ने, वल्लदीना आमनु, और लोग, उन लोगों ने जो ईमान लाए थे उसके साथ, यानी वो जो बच गए थे। अब कहा जाता है कि ये सिर्फ 313 बच गए थे, उतने ही जितने असहाबे बदर थे, बहुत थोड़े से बचे थे। अब जब ये पार करके आगे चल पड़े लश्कर, उनको तो उन्होंने कह दिया था ना, अब नहीं आप हमारे साथ आ सकते, अब वहीं पे रहें, क्योंकि वो तो आगे लड़ने के काबिल क्या होंगे, जिन्होंने पानी पीने पे भी नहीं अपने आप को रोक सकते थे, वो आगे क्या अपने आप को रोकेंगे। और हम सबको कामयाबी अगर लेनी है तो किसी ना किसी नहर से अल्लाह ने हमें गुजारना है और हमें भी आजमाना है। जरूर आती हैं नहरें ऐसी जिनमें आजमाइश होती है, और कहा जाता है नहीं यहां से नहीं पीना पानी, इसमें नहीं पड़ना तुमने, लेकिन हम खूब पीते हैं। आ गया हर गुनाह की जड़ जो है वो हुब्बे दुनिया है, मगर उसके अंदर सब मुब्तला है। आ गया अल्लाह के नजदीक स्टैंडर्ड इज्जत का क्या है, तकवा, लेकिन हमने सब ने वो स्टैंडर्ड तोड़े हैं। तो इम्तिहान तो आते हैं, लेकिन अब बात वही है कि इन इम्तिहानों से फिर कौन गुजरता है, फिर कौन है जो इन इम्तिहानों में साबित कदमी दिखाता है? ये भी जिंदगी, दुनिया, ये भी एक नहर ही है ना, जिसमें से इतना ही पियो जितना एक चुल्लू भर है, तभी आगे चल सकेंगे। तो वो तो पीछे रह गए, हजारों पीछे रह गए। बास जगह पे आता है 50,000 का लश्कर था, सारा ही पीछे रह गया। सोचे कि कैसे उनकी हालत है, और 313 सिर्फ बच गए। तो इससे ये भी हमें पता चला कि देखिए, मैदाने जंग में जाके तो फतह बाद की बात है, असल पहले तो ये है कि इंसान अपने आप को तो फतह कर ले, अपने नफ्स को तो काबू करे पहले, इसको तो शिकस्त दे। अपने नफ्स तो काबू में है नहीं, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए चल पड़। अपने नफ्स के आगे तो जोर चलता नहीं है कि इसको दबा के और उसको कहें कि नहीं, मैंने वो ही करना है जो अल्लाह का हुक्म है। अगर ये ही नहीं हो रहा तो फिर वो आगे लड़ेंगे कैसे? ये हम सबके लिए भी है, हम भी देखें कि आगे क्या, किसी को कि हमने क्या करना है। हम तो, हमसे तो अपना नफ्स भी कंट्रोल में नहीं है। जिधर को हमें हांकता है, जिधर को हमें चलाना चाहता है, हम उधर ही चल पड़ते हैं। तो जब वो आगे गए ना, तो कालू, उन्होंने कहा कि इन्होंने, अब ये ईमान वाले, अब नीचे अगर ब्रैकेट में लिखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन किसको कह रहा है। कालू, उन्होंने कहा, ला ताकतल यौमा बिजालूत व जुनूदी, हमारी तो आज नहीं है ताकत के हम जालूत और उसके लश्कर से लड़े। क्योंकि जालूत भी जो था ना, वो बहुत ही जंगजू कौम से था, उसकी भी कौम के लोग ऐसे थे जैसे देव होते हैं, यानी कहते हैं उनके भी इतने बड़े कद थे कि यानी जालूत जब अपने ऊंट पे बैठता था तो उसके पैर जमीन पे लगते थे, और लड़ने में भी इस कदर ज्यादा जंगजू सख्त थे कि यानी ये लोग सारे भी, जालूत भी पूरे लोहे के अंदर यानी कवर्ड होता था, सिर्फ उसकी आंखों के होल्स होते थे जो एक्सपोज्ड होते थे, बाकी सारा जिस्म लोहे में होता था। तो उन्होंने कहा, ये तो हमारे सामने जो लोग आ गए हैं ये तो बहुत ज्यादा सख्त है। अब उनको उनसे डर लगने लगा कि उन्होंने कहा हमसे तो नहीं उनसे लड़ा जाएगा, हालांकि ये कौन लोग हैं, ये तो ईमान वाले लोग हैं। और ईमान वाले लोगों का ईमान वाले लोगों का ऐसा कहना आपके नजदीक ये कैसी बात है? हम कहेंगे ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन देखें, याद रखिए, एक खौफ आ सकता है किसी को भी, एकदम की घबराहट हो सकती है किसी को भी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा था जब उन्होंने सांप को देखा था, मगर खौफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को वो खौफ ले बैठे और वो आगे ही ना चल सके। इनके अंदर भी एक बेचैनी, और ये किस, ये तो हमारे सामने बहुत बड़ी ये लश्कर है और ये तो इतने ज्यादा ताकतवर है, तो उनके ऊपर एक खौफ का एलिमेंट आया। तो उन्होंने कहा ये हम तो नहीं इनके साथ लड़ने की ताकत रख सकते। इससे पता चलता है मुखलिस लोगों में भी तो ऐसे हो सकता है ना, हालांकि ईमान वाले थे लेकिन उनमें भी खौफ आ सकता है। قال الذين يظنون انهم ملاقو الله, उन्होंने कहा जो यकीन रखते थे कि अल्लाह से मुलाकात होनी है। इसका मतलब कुछ लोग थे जिनका ईमान ज्यादा था, कुछ का थोड़ा ईमान कम था। देखिए ईमान के भी तो लेवल्स होते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा हमसे तो नहीं लड़ा जाता, हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। लेकिन कुछ ने उनमें से क्या कहा, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह से मुलाकात का यकीन था। इसका मतलब है कि उनके लिए ये चीज के अल्लाह ताला ने के साथ मिलना है हमें, और ये दुनिया की जिंदगी एक टेम्प्ररी लाइफ है, ये कलील है, उसके बाद हमें अल्लाह के आगे जाना है। वो क्या कह रहे हैं, उनका देखें बिल्कुल उनका डिफरेंट बात है। वो कहते हैं कम मिन फीअतिन कलीलतिन गलबत फीअतन कथीरतन बिइज़्निल्लाह। उन्होंने कहा तुम ये सोचो तारीख में कितनी दफा ऐसा हुआ है, थोड़े से लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े ग्रोहों के ऊपर, थोड़े से छोटा सा ग्रोह होता है और वो बड़े बड़े लश्करों के ऊपर फतह ले जाता है अल्लाह के इज़न से, अल्लाह की मदद के साथ। तो उन्होंने उनको बकअप किया, मोटिवेट किया कि देखो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम थोड़े हैं या ज्यादा हैं। तुम ये भी तो देखो कि दुनिया में कई दफा ऐसा हुआ है, थोड़े लोग तो होते थे अगली तरफ बहुत बड़ा लश्कर होता था, लेकिन वो थोड़े ही गालिब आ जाते थे। अब आप इसमें देखिए, इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन सहाबा के लिए कि तुम्हारे पास भी ऐसा वक्त आएगा, तुम लोग बहुत थोड़े हो गए। 313 थे ना सहाबा, और उधर 1,000 का लश्कर था काफरों का बदर में। और उस वक्त याद रखना इस बात को कि बहुत दफा ऐसा हुआ, याद रखना उस वक्त तालूत के लश्कर को कि उन्होंने क्या कहा उस वक्त कि हम तो नहीं ताकत रखते। अच्छा अब देख लें आप, ये लोग भी थे, और एक वो लोग भी थे कि जिस वक्त जब बदर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे थे और आपको पता चला कि ऐसे वो लश्कर आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा से मशवरा किया, और मशवरा इसलिए किया था कि अंसारे मदीना ने ये नहीं कहा था कि हम लड़ने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा था हम डिफेंड करेंगे, अगर कोई ऐसा हुआ मदीना के ऊपर कोई चढ़ाई हुई तो हम सब मिलकर डिफेंड करेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं कहा था कि हम ऐसे लड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि अब इनसे पूछा जाए कि ये हमारा साथ देंगे या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट में। हजरत उमर उठे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। हजरत मिकदाद उठे, उन्होंने उस वक्त ये कहा था या रसूलल्लाह हम वो बात नहीं करेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम से कही थी, फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आ जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हमसे नहीं लड़ा जाता, हम यहाँ बैठे हैं। हम तो आपके दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं यानी। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक उठा, और आप इतने खुश हुए कि सोचें सुभान अल्लाह, सहाबा की भी कैसी बातें होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुरा उठे ना और आपके चेहरे पे रौनक देखी, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मिकदाद की बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आई, ऐसी रौनक आई, जिससे मेरा दिल किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी की नेकियां मिकदाद को दे दूं और एक ऐसी बात मैं कर लूं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे रौनक आ जाए। ये होती हैं मोहब्बतें, जब मोहब्बत इस दर्जे को हो ना कि मेरी किसी बात से ये खुश हो जाए, वो फिर सहाबा ही कर सके। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि इशारा अंसार की तरफ था, फिर अंसार समझ गए, तो साद बिन मुआज उस वक्त उठे थे अंसार के जो सरदार थे, तो उन्होंने फरमाया था या रसूलल्लाह शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप हमें समुंदर पे ले चले ना और उसमें कूदने को कहें कि इसमें कूद पड़ो, तो हम उसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे और हमारा एक आदमी भी पीछे नहीं रहेगा, और हमें कतन कोई कोई जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, हमें कुछ नहीं होगा। कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा दें, आप हमें देखेंगे कि हम लड़ने में बहुत तेज हैं, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे जौहर आपको दिखाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाए, लिहाजा आप हमें लेके आगे बढ़े, हमें अल्लाह बरकत देगा। तो ये कितनी बड़ी बात थी। अब यहां पे देखें कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने मैंने आपको बताया ना सहाबा में और बनी इसराइल में फिर फर्क था, उन्होंने कहा नहीं हमारे अंदर तो ताकत नहीं, हम नहीं लड़ सकते, तो अब इनको मोटिवेट करना पड़ रहा है कि नहीं देखें ये वो, हालांकि लोग हैं जो बड़े साबित कदमी से चल के आए, वो नहर के जो इम्तिहान था उसमें से भी गुजर के आए, लेकिन अब ये और बड़ा इम्तिहान है। तो जिंदगी में एक इम्तिहान नहीं आता, एक से इंसान गुजरता है तो उससे बड़ा आगे खड़ा होता है। अब वो इतनी बड़ा लश्कर खड़ा हुआ है जो इतना ताकतवर है, उसको सामने देख के तो फिर अब उठाए हम कैसे इसका मुकाबला करें। तो जब उन्होंने कहा देखो अपनी कुव्वत से कोई नहीं लड़ता, असल बात ये है कि अल्लाह की मदद साथ हो, और अल्लाह की मदद साथ होगी तो छोटे भी बड़े लश्करों को शिकस्त दे देंगे। अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है, और सबर क्या चीज होती है कि इंसान को हालात कैसे भी हो लेकिन हक के रास्ते में वो जमा रहे, हिले नहीं, कि मैंने कहीं नहीं भागना, मैंने कहीं नहीं जाना, बस अब यही है। जैसे जब मुसलमान गए थे ना स्पेन को कॉन्कर करने के लिए, तो उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी थी कि अब वापसी कोई नहीं है, बस जब मरना है तो यहीं पे मरना है अब, चाहे ताकि कोई सोचे ही ना कि हम भाग जाएंगे वापस, अब जिंदगी मौत यही है। ये होता है सबर, जम जाना कि अब आंधी आए तूफान आए कुछ मर्जी आए, कोई मुझे कुछ कहे मजाक करे ये कहे वो कहे, कितने ही मुश्किल हालात, मैंने नहीं अब हटना इस रास्ते से क्योंकि ये हक का रास्ता है।
तो ये नहीं कि मुश्किल हालात आए तो बदहवास ही हो गए, को पता ही नहीं चल रहा, सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, अब हमसे नहीं कुछ होता। देखिए मुश्किल हालात में ठीक है, जाहिर है जो मुश्किल आती हैं, जैसे इनको भी एक लम्हे के लिए तो ये भी हिल के रह गए, तो कुछ ना कुछ इंसान के ऊपर आता है, जाहिर है कुछ गम भी आता है या कुछ इंसान परेशान भी होता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये बेसब्री है कि वो फिर गम इतना ही लंबा हो जाए कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए, हमसे कुछ होता ही नहीं है, फिर ये बेसब्री है। सब्र ये है कि ठीक है आए, आप रोए धोए, आपने थोड़ा गम भी हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद फिर उठ के खड़े हो गए, फिर संभले, फिर नहीं ये काम करना है मुझे, ठीक है। तो सबर जो होता है ना, वो जमने का नाम होता है, यानी जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही भागने शुरू हो जाए, तो क्या सबर रहा? आज तूफान आ गया, आज कैंसिल कर दें क्लास, ये हमारा सबर है। आज स्नो पड़ गई, आज तो कुछ, अब भाई आपने तो स्नो में कहीं चल के तो नहीं जाना, आज बाहर ये हालात हो रहे हैं, आज भी हमने कुरान पढ़ना, ये हमारा सबर है। ये देखें, अनलेस कि अल्लाह ना करे किसी के घर के अंदर कोई ऐसे मसला हो रहा हो, लेकिन अदरवाइज छोटी छोटी बातों के ऊपर भागने लग जाना, ये तो बेसब्री है। तो सबर ये है कि इंसान जमा रहे, चाहे मेरी मर्जी नहीं भी हो रही, जैसे मैं चाहती थी वैसे नहीं भी हो रहा, लेकिन इंसान हक के रास्ते को ना छोड़े, कोई आपको हार नहीं पहनाएगा इस रास्ते में। जैसे जैसे आप अल्लाह के हुक्मों पे चलते हैं, उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं ना, मुखालफतें आती हैं, लेकिन जम जाना यही तो सबर है। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कमेंट दे देगा, कुछ मजाक कर देगा, वो जो बेसब्रे और थुड़दिले लोग होते हैं वो बस सब छोड़ देते हैं फिर। तो अल्लाह किनके साथ होता है? सबर करने वालों के साथ, यानी अल्लाह की मदद भी फिर सबर वालों के साथ ही आती है, जो भागने वाले होते हैं उनके साथ नहीं होती। तो और अल्लाह की मदद आती है जब अल्लाह की मदद आ जाए ना, इयान सुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता, ये यकीन होना चाहिए दिल में। जालूत का ताकतवर लश्कर हो सकता था, देवकामत हो सकता था, लेकिन उनको उन्होंने यही बताया, देखो अल्लाह की मदद अगर हमारे साथ हो गई तो छोटा लश्कर भी कामयाब हो जाएगा। तो अगर कामयाबी मिलती है ना, फिर इंसान को ये नहीं उस वक्त सोचना चाहिए हमारी काबिलियत हो गई, देखा हमारी प्लानिंग चल गई, देखा हमने कितना अच्छा वो किया था, नहीं, फिर ये कहो ये बिइज़्निल्लाह है, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़न से। वलम्मा बराजुली जालूत व जुनूदिही, और जब वो निकले जालूत के लिए और उसके लश्करों के लिए, यानी अब मैदान जंग में आ गए, आमने सामने खड़े हो गए, कालू, अब उन्होंने मान ली, उन लोगों की बात तो मान ली थी कि हाँ भाई ठीक है, उन्होंने कहा, दुआ की, रब्बना अफरिग अलैना सबरन, अब क्या मांग रहे हैं, अल्लाह हमारे ऊपर उंडेल दे सबर, यानी हमें ड्रेंच कर दे सबर में, हमें, मैंने आपको बताया ना कि उंडेल देना ऐसे कि बर्तन खाली हो जाए, यानी इतना हमारे ऊपर इस वक्त सबर हमें चाहिए कि पूरा का पूरा सबर हमारे ऊपर डाल दे। क्यों इस वक्त उनको सबर क्यों चाहिए कि जमने के लिए हम भाग ना जाएं कहीं, हमारे दिल ऐसे ना परेशान हो जाएं कि हम दौड़ ही जाएं पीछे उल्टे पैर इनको देख के, हमें सबर दे दे, यानी बर्दाश्त हम करें, हिम्मत हमारे अंदर आ जाए, हम दलेरी के साथ लड़ें, तकलीफ भी सह जाएं, हम बुजदिली ना दिखाएं हम, ठीक है। तो सबर ही वो हथियार है जिससे इंसान जो है वो फिर लड़ सकता है, और बेसब्री आई तो फिर तो खड़े ही नहीं हो सकते। वह सब भी तकदामना है, हमारे रब हमारे कदमों को जमा देना, लेकिन जब भी जंगी सूरत हाल होती तो आपको पता है ना कि कदमों का जमना कितना जरूरी होता है, ओके जंगों के अंदर अक्सर ऐसे होता है कि फिर वो जो शिकस्त खा रही होती है वो पीछे रिट्रीट करने लगती है, उनके कदम जम नहीं पाते, वो फिर पीछे हो जाते हैं। अल्लाह हमारे कदमों को जमा देना, इससे पता चलती है उनकी सोच कैसी थी, उनको पता था कि कदम अल्लाह के हाथों में, और वो ही कदम साबित रहेंगे जिनको अल्लाह ताला जमाएगा, वरना हम मुतजलजल हो जाएंगे, हमारी अपनी ताकत नहीं। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और मदद कर हमारी काफिर कौम पर। और आपको पता है जब ऐसे कोई हालात होते हैं, अब इतना बड़ा लश्कर देख रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने ना अपने ऊपर तो क्या भरोसा करना था, लेकिन घबराहट में ऐसे नहीं कि अपने औसान ही खत्म हो जाए और कुछ याद ही ना रहे, उस वक्त भी उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। दुआ, दुआ भी जो होती है इंसान के लिए तकदीर को बदल देती है। और ये उन्होंने यानी मान रहे हैं कि अल्लाह हमारे अंदर ताकत नहीं है मगर हमें तेरी मदद चाहिए, ये नहीं कि हमारे अंदर इतने ईमान है हम नहीं आएंगे तो कौन है, हमारे साथ तो हमारे नबी ने हमारे साथ ये तालूत को भेजा है, हम तो जरूर ही जीतेंगे। नहीं, हमें सब्र हमारे ऊपर डाल दे, हमारे कदमों को जमा दे, और जब इंसान को ऐसी कोई घबराहट का ऐसी कोई परेशानी का वक्त आए तो फिर ये दुआ भी बहुत अच्छी है कि रब्बाना अफरिग अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना। सब्र के साथ मदद आती है ना, तो अल्लाह तू हमें सब्र दे दे, हम हिम्मत ना हारे। फहजमूहुम बिइज़्निल्लाह, तो उन्होंने शिकस्त दे दी उनको साथ अल्लाह के इज़न के, अल्लाह तालूत के लश्कर ने जालूत के लश्कर को शिकस्त दे दी, और अल्लाह ने ये दिखा दिया कि जब अल्लाह की मदद आती है तो देखो कैसे 313 ने उन इतने ताकतवरों को और इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे दी। व कतल दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे आ गए इसमें, कहा जाता है बाज रिवायत में आता है कि जब ये लश्कर गुजर रहा था ना तालूत का, तो रास्ते में जो कोई एक जगह आई वहां से दाऊद अलैहिस्सलाम बीच में शामिल हो गए। और ये एक यंग से लड़के थे, और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अमीर हो या कोई बहुत उनके अंदर, एक सिपाही के तौर पे ही उनके साथ लग गए। तो इनके पास एक गुलेल थी, उससे इन्होंने मुकाबला किया, यानी जो उसको कहते हैं उलेल होती है ना जिससे पत्थर डाल के और उससे मारते हैं। तो जब मुबारजत का वक्त आया तो उधर से जालूत आया और उन्होंने कहा कि आप लोगों में से कौन मुकाबला करेगा, तो कोई भी नहीं निकला और ये दाऊद अलैहिस्सलाम निकले। तो उसने कहा ये इतना सा बच्चा मेरा क्या मुकाबला करेगा, किसी और ताकतवर को भेजो, कोई और नहीं निकला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपनी गुलेल में पत्थर रख के मारा था तो उसकी आंख फूट गई और वो हलाक हो गया था। अब जब बादशाह ही खत्म हो जाए तो फिर पीछे आप सोचें आर्मी का क्या मोरल रहेगा। ये सारी स्टोरी इनकी क्रिश्चियंस की भी उसके अंदर है, उन्होंने इसके ऊपर काफी वो कार्टून्स और इस तरह भी बनाए हुए हैं, यानी उससे जालूत इनके यहाँ भी कुछ उसको कहते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम डेविड उनको ये मानते हैं ना एज अ प्रॉफिट। वाताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत, और अल्लाह ने उनको अता की बादशाहत। बादशाहत कैसे कि तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा और अपनी बादशाहत में भी उसको हिस्सा दूंगा। तो उन्होंने अपनी बादशाहत में भी हिस्सा दिया, और ईसाई रिवायत है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी उनकी बेटी से हुई और उसके बाद तालूत के बाद इन्हीं को बादशाह बना दिया गया। तो अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत भी दी, अल्लाह ने इनको हिकमत यानी नबुवत भी दी। पहले मैंने आपको बताया ना अलग अलग होते थे, बादशाह अलग होता था नबी अलग होता था, लेकिन इनको दोनों चीजें अता फरमाई। और आपको पता है ये दौर बनी इसराइल की सबसे अरूज का दौर था, सबसे ज्यादा इनकी पीक का टाइम था ये, और आज तक ये उसको बहुत समझते हैं। स्टार ऑफ डेविड आपने देखा होगा, ये बहुत अपने उस वक्त को याद करते हैं। वह अल्लामहू मिम्मा यशा, और सिखाया उसको उसमें से मिम्मा यशा जो उसने चाहा, जो अल्लाह ताला ने चाहा वो उलूम उनको अता फरमाए। ये इल्म भी देना अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला किसी को कोई इल्म कोई हुनर अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उनको जीरा बनाने का इल्म दिया था, लोहे को उनके हाथ में नरम कर दिया था, उनको खूबसूरत आवाज दी थी जिसमें वो जबूर पढ़ा करते थे। और फिर अल्लाह ताला का एक आम रूल आया, आम कानून अल्लाह ताला का आया, वलौला दफ़ुल्लाहिन्नासा बादहुम बिबादिन लफसदतिल अर्ध। यही अल्लाह का तरीका रहा है, अगर अल्लाह इस तरह बाज लोगों को बाज के जरिए ना हटाए ना तो दुनिया में फसाद पैदा हो जाए। यानी एक कौम ऊपर आती है और जब वो उरूज पे आ जाती है उसके अंदर तकब्बुर भरने लगता है, वो अपने आप को बड़ी ताकत समझने लगती है और फिर वो जुल्म पे उतर आती है। तो अल्लाह ताला का कायदा नहीं है कि हमेशा बस एक ही कौम ऊपर रहेगी, अल्लाह उसको हटा के किसी और को ले आता है, उसका जवाल आ जाता है, कोई और कौम ऊपर चली जाती है, किसी और को जरिया बना देता है उनको हटाने का। और हमेशा दुनिया में ऐसा रहा है। आप देख लें, फिरौन को मूसा अलैहि सलाम ने हटा दिया, यहाँ पे दाऊद अलैहि सलाम ने जालूत को हटा दिया, जो कौमें ऊपर थीं और अपने आप को सबसे ऊपर बड़ा समझती थी। और आप वैसे भी हिस्ट्री में देख लें, आप ब्रिटिश को देख लें, ब्रिटिश ने कैसे रूल किया था। वो कहते थे कि हमारी सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता, इतनी बड़ी एम्पायर थी इनकी। और आज देखें कितने से मुल्क तक महदूद है। सूरज गुरूब नहीं होता, समझ आती है कोई बात? यानी सूरज जब निकलता है ना, तो वहां पे भी इनकी एम्पायर, और गुरूब होता है वहां पे भी इनकी एम्पायर, और फिर वही निकल आता है। यानी जिस जिस पूरी दुनिया में इनका ऐसे रूल था कि यानी कहीं ना कहीं हर वक्त में किसी ना किसी जगह पे दिन होता था, ये मतलब है। यानी अराउंड द ग्लोब इनकी हुकूमत थी। फिर क्या हुआ, जिन लोगों को वो स्लेव कहते थे, जिन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करते थे, गुलाम बना बना के रखा, आज वो ही लोग फिर इनके महलों तक पहुंच गए। और इनकी जिन्होंने कभी सोचा ना था, वो इनके यहाँ शादी करते हैं, उनकी लड़की इनके यहाँ शादी करती है। कितनी अल्लाह ताला दिखाता है ना। सिकंदर आजम का नाम देखे, पूरी दुनिया वो फतह करने वाला था, और कहाँ है आज? अल्लाह हटा देता है। ऐसे नहीं होता कि हमेशा एक ही है, और वो जुल्म चाहे ढाए जाए, चाहे जो वो जो मर्जी करते जाए, और उनको हटाने वाला कोई ना हो, वो ही पावर में आगे चलते जाते जाए। ऐसे नहीं होता, एक ना एक दिन जवाल आ जाता उनका। तो अगर अल्लाह ऐसे ना करता ना, तो जमीन में बड़ा बिगाड़ हो जाता। जाहिर है वो तो फिर बहुत ही आपे से बाहर हो जाते, जुल्म की इंतहाएं कितनी हो जाती। लेकिन अल्लाह जहान वालों पे बड़ा फजल करने वाला है, इसीलिए अल्लाह हटा देता है फिर उन लोगों को। जब वो जुल्म पे उतरते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी जगह दूसरे लोग ले आता है, कुछ दूसरों का उनका जानशीन बना देता है। तिलका आयातुल्लाही नतलूहा अलैका बिलहक, ये आयात हैं अल्लाह की, हम पढ़ते हैं इनको आपके ऊपर हक के साथ। यानी ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, ये अल्लाह की तरफ से वही आई है, ये बिल्कुल इंसाफ वाली बात है। ये ऐसे ही कहानियां नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसे ही कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये वाकई ऐसा ही हुआ। और इन वाकयात को बनी इसराइल, ये जो यहूद थे ना, ये भी इनकी किताबों में थी, ये भी भूल चुके थे, इनको इनके पास इतनी डिटेल में ये वाकयात नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आके वाकया जब ऐसे सुनाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकये को नहीं जानते थे, ये एक निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कि ये अल्लाह की तरफ से आप पे वही आती तो आप सुनाते। इन्नक लमिनल मुरसलीन, तो बेशक आप अल्लाह के रसूलों में से, क्योंकि अगर आप अल्लाह के रसूल ना होते, और जैसे ये कहते हैं कि खुद ही बना के ले आते, तो आप ऐसी बात कैसे बना के ले आ सकते जो बिल्कुल सच्ची है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनकी किताबें नहीं पढ़ी हुई थी कि आपको पता होता। तो देखें अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला एक से दूसरे को हटा देता है, एक ताकत होती है तो दूसरी ले आता है, फिर उनको वो चले जाते हैं और कोई और आ जाते हैं। ये ना होता तो आज तक कितने ही इसी तरह चलते चले जाते सिलसिले, और पता नहीं कितना जुल्म होता दुनिया में। तो अल्लाह फिर वो इब्ने कय्यिम का कॉल है ना, कि अल्लाह ताला कुफर को मोहलत देता है, जुल्म को मोहलत नहीं देता। यानी जुल्म जब करने लगते हैं लोग, तो अल्लाह हटा देता है उनको, अल्लाह खत्म कर देता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका दूसरा पारा मुकम्मल हो गया, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस इल्म को आपके लिए मुबारक करे, अल्लाह ताला इस इल्म को नाफे बना दे आपके लिए, अल्लाह ताला इस इल्म पे अमल करना हम सब के लिए आसान फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين